नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं जो पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के एक प्रेरणादायक उद्बोधन से लिया गया है, मन को भगवान के साथ जोड़िए।
हाँ बिल्कुल,
मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी काम हो और खासकर जब हम भगवान की उपासना या भजन करते हैं तो उसमें मन का साथ होना, मन का जुड़ाव होना क्यों इतना जरूरी है।
देखिए, ये बहुत ही मौलिक बात है।
हाँ,
शुरुआत में एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया है गुरुदेव ने, बयां पक्षी और कबूतर का।
हाँ,
बयां कैसे एक एक तिनका जोड़कर बड़े मन से क्या कमाल का घोंसला बनाती है, एकदम कलात्मक, मजबूत।
सही कहा।
और दूसरी तरफ कबूतर को देखिए।
हाँ, बस कुछ तिनके यहाँ वहाँ रख दिए, बेढंगा सा, टिकता भी नहीं।
बिल्कुल, तो ये हमें क्या सिखाता है कि मन लगाकर जो काम किया जाए वो सार्थक होता है,
और जिसमें मन ना हो वो
बस
अधूरा रह जाता है।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि क्रिया और विचार, ये दोनों कैसे मिलकर साधना को और जीवन को भी सार्थक बनाते हैं।
हाँ, पूज्य गुरुदेव इसी बात पर बहुत जोर देते हैं, क्रिया और विचार का जुड़ाव, कर्म और चेतना का। वो कहते हैं जैसे बिजली के तार होते हैं ना, ठंडा और गर्म।
हाँ हाँ,
जब वो दोनों मिलते हैं तभी तो करंट आता है, ऊर्जा पैदा होती है। वैसे ही हमारा शरीर जो क्रिया करता है और हमारा मन जिसमें विचार हैं, भावनाएं हैं।
अच्छा,
जब ये दोनों मिलते हैं, एक साथ काम करते हैं, तभी उस कर्म में, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक, जान आती है, वरना तो वो बस एक मशीन की तरह हरकत है।
और ये बात उपासना या भजन में तो और भी ज्यादा लागू होती है। जैसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ जुबान से मंत्र बोलते रहना वो तो जीभ की लपालपी है।
बिल्कुल,
और पूजा में जैसे चावल चढ़ा दिए, आरती घुमा दी, अगर मन कहीं और है तो वो बस हाथों की हेरा फेरी बनकर रह जाती है।
सही, वो बाहरी क्रिया तो हो गई लेकिन अंदर कुछ नहीं हुआ।
तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ये मन भागता क्यों है पूजा के वक्त, लगता क्यों नहीं है।
देखिए गुरुदेव, इसका बड़ा सीधा सा कारण बताते हैं। मन का स्वभाव ही है भागना, चंचल है वो।
हाँ ये तो है,
खासकर जब उसे कोई काम ना दिया जाए, जैसे खाली घोड़ा हो, लगाम ना हो, तो वो इधर उधर भागेगा ही।
अच्छा,
तो शिकायत करने से बेहतर है कि उपासना के वक्त मन को भी एक काम सौंप दिया जाए।
काम? कैसा काम?
चिंतन का काम। मतलब जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो मंत्र बोल रहे हैं, उसके पीछे जो संकेत है, जो शिक्षा है, जो उद्देश्य है, उस पर सोचना, विचार करना।
अच्छा, मतलब सिर्फ करना नहीं, समझना भी है।
हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आचमन कर रहे हैं।
हाँ,
अब सिर्फ पानी पी लेना तो एक क्रिया हुई। लेकिन अगर उस वक्त ये भाव करें, ये सोचे कि इस जल से मेरी वाणी पवित्र हो रही है, मेरे बोलने के दोष धुल रहे हैं, जैसे गुरुदेव कहते हैं, कल्पना करो कि जीभ को धोबी पाट पर रगड़कर साफ कर रहे हैं।
अरे वाह, मतलब कितनी गहरी भावना है इसके पीछे।
हाँ, तब मन उस क्रिया से जुड़ जाता है, तब वो महज एक शारीरिक व्यायाम नहीं रहता बल्कि एक गहरा अनुभव बन जाता है।
इसी से जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है, आत्मशुद्धि की।
हाँ ये तो नींव है।
मतलब कोई भी सिद्धि पाने से पहले या आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले खुद को साफ करना, शुद्ध करना जरूरी है।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव अपना ही उदाहरण देते हैं कि उनके गुरु ने उन्हें 24 महापुरुष चरण पूरे करने के बाद ही अपनी सीधी शरण में लिया।
24 साल?
वो क्यों? क्योंकि तब तक उनका वो शारीरिक और मानसिक शोधन पूरा हुआ जो जरूरी था। जैसे कच्चा रुआ होता है ना।
हाँ?
उसे भट्टी में तपाते हैं, पीटते हैं, तब जाकर वो साफ होता है, मजबूत स्टील बनता है, कीमती बनता है। वैसे ही आत्मशोधन की प्रक्रिया है।
मतलब जीवन को तपाकर ही निखारा जा सकता है।
बिल्कुल, और असल में अध्यात्म यही है, ये कोई चमत्कार दिखाने या इच्छा पूरी करने का कोई शॉर्टकट नहीं है।
हाँ, अक्सर लोग यही समझ लेते हैं।
नहीं, ये तो जीवन को सलीके से जीने की कला है, खुद को बेहतर बनाने की एक वैज्ञानिक विधि है। ईश्वर ने ये जो जीवन दिया है, ये सबसे बड़ा उपहार है। इसे संवारना, इसे सुधारना, यही सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ी साधना।
तो उपासना का लक्ष्य भगवान को खुश करना नहीं?
नहीं बिल्कुल नहीं, भगवान को फुसलाना नहीं है, लक्ष्य है खुद को शुद्ध करना, अपनी कमियों को, अपने दोषों को हटाना। जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं, संयमित होती हैं, तो उनमें गजब की शक्ति आ जाती है।
जैसे गांधारी का उदाहरण दिया जाता है।
हाँ, महाभारत में आंखों पर पट्टी बांधकर, यानी दृष्टि को संयमित करके, उन्होंने कैसी शक्ति अर्जित की थी। तो हमें परमात्मा की शक्तियों को, देवी को, नौकरानी नहीं समझना है कि बस हुक्म चलाया, उन्हें मां समझना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है।
तो फिर ये सब करने का, मतलब मन को जोड़ने का और सही रास्ते पर चलने का व्यवहारिक तरीका क्या है?
देखे, सबसे मुख्य वाक्य तो यही है जैसा हमने कहा कि जो भी कर्मकांड करें, जो भी क्रिया करें, उसके पीछे की शिक्षा, उसके पीछे का भाव, उसकी विचारणा, उस पर ध्यान लगाएं।
क्रिया और भावना का मेल,
हाँ, वही साधना को जीवंत बनाता है। और दूसरी बात, हम सब परमात्मा की संतान हैं, है ना?
हाँ।
तो हमारा काम सिर्फ अपनी परेशानियां लेकर उनके पास रोना गाना नहीं है, बल्कि उनकी इच्छा के अनुसार एक अच्छा श्रेष्ठ जीवन जीना है, उनके काम में हाथ बटाना है।
तो इसके लिए गुरुदेव ने कुछ सूत्र भी दिए हैं शायद?
हाँ, उन्होंने 6 बातें बताई हैं, एक तरह से जीवन जीने का सही तरीका। पहला तो ये कि अपनी जरूरतें कम रखें, सादगी से जिएं। दूसरा, ये समझें कि हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर का है, हम तो बस उसके ट्रस्टी हैं, रखवाले हैं,
मालिक नहीं,
मालिक नहीं। तीसरा, जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, उनका हिम्मत और समझदारी से सामना करें और जो प्रारब्ध है उसे धैर्य से सहें।
ठीक है।
चौथा, भजन साधन से, स्वाध्याय से मन को ईश्वर में लगाए रखें। पांचवा, अपने अंदर जो गलत विचार आते हैं, जो बुरी आदतें हैं, उन्हें पहचाने और उन्हें हटाने की कोशिश लगातार करते रहें।
आत्मनिरीक्षण मतलब?
बिल्कुल। और छठा, सबसे जरूरी, दूसरों की भलाई के लिए, लोक सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से काम करें।
तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि हमें अपने मन को अपनी हर क्रिया के साथ, चाहे वो रोज का काम हो या पूजा पाठ, पूरी तरह से जोड़ना होगा।
हाँ।
और आत्मशुद्धि इस रास्ते का पहला सबसे जरूरी कदम है। सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंदर के बदलाव में है, खुद को बेहतर बनाने में और ईश्वर की मर्जी के हिसाब से जीने में है।
और यहीं पर एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है कि क्या हम अपने रोज के काम और अपनी उपासनाएं, क्या हम उन्हें सिर्फ एक रस्म की तरह निभा रहे हैं, मशीन की तरह, या वाकई में पूरी जागरूकता के साथ, पूरे भाव के साथ कर रहे हैं?
ये सोचने वाली बात है।
हाँ, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। ओम शांति।